यह न्यूज टॉक है। टेक, बिजनेस, राजनीति और विश्व घटनाओं पर आपकी एआई द्वारा क्यूरेटेड शीर्ष कहानियाँ। सिर्फ 5 मिनट में प्रतिदिन समाचार प्राप्त करें और सूचित रहें।
आज के पहले विषय में आपका स्वागत है। सीमाओं को तोड़ते हुए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने वंचित छात्रों के लिए एक नई और निःशुल्क ऑनलाइन शैक्षिकी मंच की शुरुआत की है। ये घोषणा 2024 के लॉग इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जहां कुमार ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उनका मानना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से देश के वंचित वर्गों के छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस कदम को शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मंच पर आ रहे हैं अगले विषय की ओर। आज हम बात करेंगे भारत की उस सटीक रणनीतिक संतुलन कला की, जो ईरान इजराइल संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं के बीच सामने आई है। हाल ही में भारत ने इस संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का आग्रह किया। इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया। अपने राजनयिक मिशन को दमिश्क में निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने इस कार्रवाई को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। इस प्रकरण से भारत की विदेश नीति का एक नया आयाम सामने आता है, जो विविध अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संतुलन और रणनीतिक दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। समापन में हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष संवाद के माध्यम से शांति की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। मित्रों, हम एक नए मुद्दे पर चलें। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके अनुसार आयकर विभाग ने जो कथित हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन किया था, उसकी अंदरूनी कहानी कुछ और ही है। लेकिन आयकर विभाग ने इस दावे का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का आरोप था कि उनके नेता अभिषेक बैनर्जी द्वारा इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। हालांकि विभाग का कहना है कि ऐसा कोई तलाशी या सर्वेक्षण नहीं किया गया था। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मालदा से आने वाले एक हेलीकॉप्टर की नियमित जाँच के लिए अधिकारियों को बेहाला फ्लाइंग क्लब पश्चिम बंगाल भेजा गया था। यह मामला निश्चित रूप से राजनीति और संस्थानों के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करता है। देखना होगा कि इस घटनाक्रम का आगामी चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर मुद्दे पर, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है। एक दुखद घटना में एक किशोरी और उसके बच्चे पर एक लड़के ने हमला किया। इस घटना का वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसने समूचे समाज को हिला दिया है। हमलावर, जिसने टोपी और डेनिम पहन रखी थी, ने जबरन किशोरी को चूमा और फिर भाग गया। ये घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह बीजेपी सरकार के नारी सम्मान के वादे पर भी प्रश्न खड़े करती है। तृणमूल ने इस घटना की गहरी पड़ताल की है और यह मामला अब सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा में है। मित्रों, ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के लिए हमें अधिक सजग और क्रियात्मक होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम विषय की ओर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा की गई एक क्रांतिकारी पहल के बारे में, जिसने मतदान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करने का रास्ता तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश भर में 200 से अधिक मतदान केंद्र हाउसिंग सोसाइटियों में स्थापित किए हैं। ये कदम उन शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां पहले कम मतदाता भागीदारी देखी गई थी। लक्ष्य स्पष्ट है दोस्तों, मतदान प्रतिशत में वृद्धि और इसी के साथ उत्तर प्रदेश को एक परिवर्तनकारी मतदाता संलग्नता के पथ पर ले जाना। इस पहल का महत्व यह है कि यह न केवल मतदान की सुविधा को बढ़ाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर मतदाता की आवाज़ सुनी जाए और हर वोट गिनती में आए। तो चलिए इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम भी अपने अधिकारों का प्रयोग करें और मतदान को एक जन उत्सव बनाएं। ये थी आज की चर्चा, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद और शुभ विदाई।
आज ही प्ले स्टोर से न्यूज़ टॉक ऐप डाउनलोड करें। अनेक भाषाओं में संक्षिप्त सारांशित समाचार पढ़ें और सुनें।